ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जा रहे हैं। इस दौरान वे 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के पुदीन दाका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इस पर करीब 1.85 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना से 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से भुवनेश्वर में शुरू होगा। उड़ीसा सरकार 50 देशों से भारत आने वाले एनआरआई के समक्ष राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन करेगी। सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम से होगी, जिसका आयोजन उड़ीसा सरकार युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शुक्रवार को समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों को उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू इस संस्करण की मुख्य अतिथि हैं। वे सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगी। इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये प्रवासी समुदाय के लिए एक विशेष पर्यटक रेलगाड़ी है, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी और 3 सप्ताह तक विभिन्न स्थानों का दौरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियमावली 2025 का मसौदा नागरिक केंद्रित शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि नियमावली का उद्देश्य विकास और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया गया है। मंत्रालय ने MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से 18 जनवरी तक जनता और हितधारकों से मसौदा नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। उन्होंने दावा किया कि 5 फरवरी को मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे, क्योंकि आप सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों, सीवेज की समस्या और सड़कों की खस्ता हालत से राहत मिलेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई है कि मतदाता आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए फिर से चुनेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा उपलब्ध कराएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति JPC की पहली बैठक आज होगी। इन विधेयकों को आधिकारिक तौर पर संविधान का 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के प्रतिनिधि प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों के बारे में सदस्यों को जानकारी देंगे। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन कल मलेशिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पेरिस 2024 के सेमीफाइनल तक पहुंचे लक्ष्य सेन को कल कुआला लंपुर में ताइवान के ची यू जेन ने 14-21, 7-21 से हरा दिया। खो खो विश्व कप 2025 13 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से खो खो प्रतियोगिता के पहले संस्करण में 20 पुरुष और 19 महिला टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।